ओम शांति। आदरणीय श्रद्धे शिलु दीदी जी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान है। भगवान शिव के इस वरदान को प्राप्त आदरणीय दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, राजयोग शिविरों की संचालिका हैं, शिक्षा प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन हैं, टीवी चैनल्स की प्रवक्ता, महासम्मेलनों की वक्ता और अनुवादक हैं और विश्व के 75 से भी अधिक देशों में आपने ईश्वरीय संदेश दिया है। पिछले 62 वर्षों से ज्ञान में हैं, 52 वर्षों से इस महायज्ञ में समर्पित हैं, बाबा और मम्मा की पालना लिए हुए हैं। 21 वर्ष की आयु में आपने अपना जीवन समर्पित किया। 1976 से आप मधुबन में सेवा रहते हैं। जी टीवी, सोनी टीवी और जागरण चैनल पे आपके प्रवचन नियमित रूप से आते रहते हैं। आप बहुत ही अनुभवी हैं, नम्रचित हैं, मिलनसार हैं और जो शिक्षा आपके मुख से निकलती है वो आपके जीवन में उतरी हुई दिखाई देती है। तो ऐसी गुणों की धनी, शक्तियों की धनी आदरणीय शिलु दीदी जी से अभी हम सुनेंगे निरंतर याद की विधि। शिलु दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी योगी हैं, हम सभी राजयोगी हैं, हम सभी सदा के योगी हैं, हम सभी निरंतर योगी हैं। बाबा कहते हैं ये चार बातें आपको सदा याद रखती हैं। हम केवल एक आध घंटे के योगी नहीं हैं। जो हठ योगी होते हैं, चलो एक आध घंटा वो हठ योग करते हैं या प्राणायाम करते हैं या कोई आसन लगाते हैं, एक घंटा चलो सुबह शाम कर लेंगे, लेकिन निरंतर तो नहीं होगा, सदा तो नहीं होगा। लेकिन बाबा हम बच्चों को यही टाइटल देते हैं, आप केवल 2-4 घंटे के योगी नहीं हो, सदा के योगी हो। अब सदा के योगी, निरंतर योगी हम हैं, ये हम कैसे सिद्ध करें? बाबा ने जो अभी अव्यक्त बुलियां चलाई, जो संडे को हम सुनते हैं, उस समय 91 में तपस्या वर्ष था और बाबा ने कहा कि कम से कम 4 घंटा बैठकर योग जरूर करना है। वैसे तो बाबा हमेशा कहते 8 घंटा आपका योग हो, 8 घंटा बाबा की याद हो, 8 घंटा आराम हो, 8 घंटा आपका जो भी लौकिक और कारोबार है वो हो। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि नहीं, सदा के योगी, निरंतर योगी, कर्म में भी योगी। इसीलिए बाबा ने इस राज योग को जो अनेक नाम दिए हैं वो हमारे अलग अलग राजयोग के नाम सिद्ध करते हैं कि हम कैसे निरंतर योगी बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये राजयोग क्या है, सहज योग है। सहज योग अर्थात कोई शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, वहां तो आसन लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, क्या नहीं करते हैं, तो कितना कष्ट भी देते हैं शरीर को। और यहाँ बाबा कहते कष्ट देने की जरूरत नहीं है, सहज योग है। फिर बाबा कहते ये बुद्धि योग है, बुद्धि द्वारा हम समझते हैं, उसके लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के ये योग नहीं हो सकता है। ये केवल मंत्र के आधार पर योग नहीं है, वहां तो गुरु एक मंत्र दे देगा और कहेगा ये सारा दिन जाप करो, फिर हाथ में माला लेते हैं। बाबा ने उस दिन भी कहा गौमुख बनाते हैं तो गुप्त अंदर ही अंदर हाथ में माला होती है, वो गाय का मुख में हाथ डालते हैं और माला फेरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको वो समझते अजपा जाप, अंदर ही अंदर मुख से कुछ नहीं कहते लेकिन अंदर ही अंदर जाप चलता रहता है। और बाबा कहते हैं तुम्हारा इस प्रकार से जाप भी नहीं है, तुम शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे नहीं कहते हो, वो तो राम 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 करते हैं, धुन लगाते हैं। मुझे याद है मैं कुरुक्षेत्र गई थी, वहां पर मेला था अपना, तो वहां पर वो कुरुक्षेत्र का जो स्थान है जहां पर बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ ही एग्जीबिशन भी लगाई थी और शिविर भी रखी थी। तो वहाँ सवेरे सवेरे शिविर कराती थी 7 बजे, कई साधु महात्माएं भी आते थे शिविर में। तो और वहाँ पीछे बैकग्राउंड में राधे 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 सारा टाइम राधे 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 की धुन चलती थी। एक सांस का पूरा हुआ दूसरा सांस का शुरू हो गया, यानी कंटिन्यूस राधे 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 चलता ही रहा। यह हमारी शिविर चल रही थी, उनका तो बहुत जोर से आवाज था। अब हम लोगों ने तो वो टेंट के अंदर ही स्पीकर रखा था, लेकिन अब शिविर करानी थी तो करानी पड़ी। लेकिन उनकी वो धुन ऐसे चलती रही, ऐसे धुन चलती रही, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, कहते जैसे बाजा बजता है, चलता ही रहता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते ये भी जरूरत नहीं है, कोई जाप की भी जरूरत नहीं है, ये तो याद है, याद के लिए कोई जाप की जरूरत नहीं होती है। चलो हाथ में माला होगी और मुख पर कोई जाप होगा, और चलो सामने कोई मूर्ति भी होगी, लेकिन होता क्या है, हाथ के मणके फिरते रहते हैं, मुख पर वो जाप चलता रहता है, सामने मूर्ति भी होती है, तो आंखों को तो काम दे दिया, मुख को भी काम दे दिया, हाथों को उंगलियों को भी काम मिल गया, लेकिन मन को तो कुछ काम दिया ही नहीं, तो मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस मन को मेरे में लगाओ, भगवान तो यही कहते ना, इस मन को मेरे में लगाओ, तन मना भव नहीं का, माला मना भव नहीं का, मूर्ति मना भव नहीं का, मन मना भव का। तो मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि मन को दिशा दे शिव बाबा की तरफ। अभी क्या होता है दुनिया में, हम देखते हैं इंद्रियां इतनी प्रबल है, इंद्रियां मन को दिशा देती है, क्या सोचना है वो इंद्रियां दिशा देती है। इसलिए जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये जो पंच इंद्रियों के पंच रस हैं, वो मन को अपने ओर प्रभावित करते हैं और मन उसी के बारे में सोचता है और बुद्धि को दबा देता है। अब बुद्धि कहेगी नहीं ये मत सोचो, लेकिन इंद्रियों के वश है मन, तो वही सोचता है तो बुद्धि को दबा देता है। बुद्धि बिचारी क्या करे, समझ भी तब काम करे जब मन भी तो साथ दे। तो मन है संकल्प, बुद्धि है समझ, पर वो समझ आते हुए भी मन क्योंकि इंद्रियों के वश है, और इंद्रियों के वश क्यों है, क्योंकि देह अभिमान है, तो देह अभिमान के वश होने के कारण मन उसी में फंसा हुआ है। तो बिचारी बुद्धि भी क्या करे, बुद्धि भी तब दब जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते ये बुद्धि योग है, इंद्रियां मन को दिशा न दे लेकिन बुद्धि मन को दिशा दे। बुद्धि मन को कहे तुमको क्या सोचना है, किस ओर मन के संकल्पों को ले जाना है। और बाबा कहते परम धाम को याद करो, बाबा कहते सत्युग की दुनिया को याद करो, चक्र को याद करो, ड्रामा को याद करो, सूक्ष्म वतन को याद करो। तो वो याद कैसे आएगी जब वो चित्र हम अपने मन पटल पर खींचते हैं, क्योंकि जिसकी याद होती है माना वो चित्र हमने अपने मन पटल पर खींचा। तो बुद्धि माना समझ ज्ञान, वो ज्ञान मन को शिव बाबा की तरफ ले जाए। और मन अगर इंद्रियों के वश हो रहा है तो बुद्धि उसको रोके। बुद्धि हमारी जैसे ब्रेक है, अब गाड़ी चल रही है दौड़ रही है लेकिन बहुत हाई स्पीड है, तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। अगर ब्रेक ठीक काम नहीं करेगी तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो बुद्धि वो ब्रेक का काम करे। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं कि जब मन बहुत भटक रहा है तो बुद्धि मन को कहे नहीं नहीं ये सोचना है, नॉट NOT नॉट, और फिर कई डॉट, क्योंकि कई बार मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, जो हमको नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच देते हैं और सार को विस्तार कर देते हैं, असार बना देते हैं। तो बिंदु लगा दो, ड्रामा ये नहीं सोचना है। फिर उस दिन भी बाबा ने कहा कि वाई वॉट नहीं लेकिन डॉट, वाई वॉट नहीं फ्लाई, बाबा ऐसे भी कहते हैं, हाय बाबा हाय हाय नहीं वाह बाबा वाह। तो जैसे ये शब्द भी मुख से बदल गए, मन की सोच भी बदल गई, तो ऑटोमेटिकली मन बाबा की तरफ जाएगा। हमारी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कह करके इतना नशा चढ़ाती थी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार जरूर कहलवाती थी, और फिर कहती थी मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है, नशा, इतना नशा था दादी को। अब यही तो योग है, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है। इसलिए बुद्धि समझ करके मन को पहले अपने अंदर महसूस करे, मैं वो आत्मा हूँ, मैं उस शिव बाबा की संतान हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ। फिर आज जैसे बाबा ने कहा निरंतर याद के लिए आप ये सोचो हमने कैसे चक्र लगाया, क्योंकि चक्र का ज्ञान भी याद का ही रूप है। कैसे जो बाबा 5 स्वरूपों की याद कहते हैं, कैसे हम आदि में कितने पवित्र थे, फिर कैसे पूज्य स्वरूप में आए, फिर कैसे अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर कैसे फरिश्ता बनना है, ये भी याद का ही स्वरूप है। तो याद के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, फिर बाबा कहते हैं ये कर्म योग भी है, तुम्हें कर्म तो छोड़ना नहीं है, कर्म भी करना है और मुझे याद भी करना है, जिसको बाबा कहते कर कार्डे दिल यार दे। जैसे लैला मजनू का बाबा मिसाल देते हैं, वो लैला कुछ भी काम करती लेकिन हर वक्त मजनू उसके सामने खड़ा है, उसकी आंखों के सामने जैसे मजनू ही घूम रहा है और मजनू की आंखों के सामने लैला ही बैठी है, घूम रही है नहीं, लेकिन वो इतनी याद उनकी पक्की है जो एक दो को भूल ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों का साजन हूं, तो साजन को सजनी कैसे भूल सकती है? पतिव्रता स्त्री तो कभी अपने साजन को नहीं भूलती है। इसीलिए हाथों से काम करो लेकिन बुद्धि मन को बाबा की तरफ ही ले जाए, मन एक नेत्र बनकर बाबा को ही देखे और बुद्धि उसी के बारे में ही सोचे, बाकी हाथों से बल कर्म करो। कई लोग कर्म योग का सही अर्थ नहीं समझते हैं। जब हम कई बार पूछते हैं ना, आप कई कहते हैं मैं तो कर्म योगी हूं, तो हम पूछते हैं कर्म योग का अर्थ क्या है, तो कहते हैं बस कर्म से योग। हमारे पास कई कॉन्फ्रेंसेस होती है, एक बार नर्सेस की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ, तो हमने देखा कई ऐसी नर्सेस थी जिन्होंने शादी नहीं की थी, शादी नहीं, वो कहते तो उनसे पूछा कि आपने शादी नहीं की, तो कहा नहीं, आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन, जो मेरा ये व्यवसाय है नर्सिंग का, मेरा विवाह उसी के साथ है, यही मेरा सब कुछ है, मैं ऐसी कर्म योगी हूँ, बस कर्म से ही मेरा योग है। अब बाबा कहते नहीं, कर्म से योग ना हो, कर्म तो निमित्त मात्र है। अब रोटी पका रहे हैं माताएं, सब्जी पका रहे हैं भाई, गाड़ी चला रहे हैं, जो कुछ भी, अब उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें दिमाग लगाना है, बहुत गहराई से सोचना है, वो बात और है, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं साधारण होते हैं जिसमें बस हाथों से काम ही करना होता है और वही वही रिपीट करना होता है काम, तो हमारा मन तो काम का काम पहुंच जाता है, भले शरीर से हाथों से उंगलियों से काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि कर्म से योग, योग माना याद, योग माना जोड़, तो कर्म से ही जोड़ है नहीं, कर्म हाथों से कर रहे हैं, मन बुद्धि बाबा के पास है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे मैंने चक्र लगाया, उसको याद करना क्या मुश्किल है। और जब बाबा कहते कर्म योग, कर्म हाथों से और शिव बाबा से योग, तो आपका कर्म बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, आपका कर्म सफल होगा, लेकिन हम उस सफलता का श्रेय खुद नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो बाबा की याद में किया और बाबा ने मुझे मदद किया, तो मैंने हिम्मत रख करके वो कार्य किया और बाबा की ऐसी मदद मिली जो उस कार्य में सफलता मिली, तो हम सफलता किसको देंगे? शिव बाबा को, बाबा आपके कारण ये सफलता मिली, मैं तो आपकी याद में थी, तो इसीलिए वो सफलता का श्रेय हम नहीं लेंगे, लेकिन हम कहेंगे ये बाबा के कारण हुआ। इसीलिए गीता में आता है कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्, कर्म पर आपका पूरा अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, और फल ईश्वर पर तब छोड़ सकेंगे जब कर्म वो परमात्मा की याद में किया हुआ हो। अगर अभिमान वश कर्म कर रहे हैं, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, मेरे बिना कोई हाथ तो लगा के देखे, मानो कहीं अभिमान वश क्या क्या सोचते हैं, तो ये अभिमान जहाँ आ गया तो वो कर्म, तो कर्म योग तो हुआ ही नहीं, उसमें परमात्मा की याद तो है ही नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते कर्म योगी माना निमित्त, ये निमित्त मैं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है, वो करण करावन हार है, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा नहीं कराया फिर बाबा कोई फल सपोर्ट करते। इसका ही फिर उल्टा अर्थ क्या ले लिया, हाँ, जैसे ग्रंथ में आता है, करण करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ। अब ये कहावत वास्तव में है बहुत सुंदर, करण करावन हार आप ही हो, आप ही सब कुछ करते कराते हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये वास्तव में क्यों कहा गया, ताकि मनुष्य को अभिमान ना आवे कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया। वो अभिमान अगर आएगा तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि अगर उस अभिमान के वश किया पर सफलता नहीं मिली तो कितना दुख होता है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने किया, मैं और सफलता नहीं मिली, निराश हो गया। लेकिन मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, शक्ति वो दे रहा है और हाथ मेरे है, पर कराने वाला बाबा है, हमारे हाथ में नहीं है, बाबा की याद में कर रहा हूँ। अब फल भी बाबा देगा, हम क्यों चिंता करें। तो अगर सफलता मिली तो कोई अभिमान नहीं, हम कहेंगे बाबा ने कराया, और अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं। क्यों दुख नहीं, असफलता मिली तो भी दुख नहीं, क्योंकि हमने तो अपने तरफ से पुरुषार्थ किया, अब बाकी बाबा के हाथ में बाकी ड्रामा, हम दुखी थोड़ी होंगे, क्योंकि फल की चिंता तो थी नहीं, वो बाबा जाने, हमको कर्म ठीक करना है। तो ये है सच्चा कर्म योग। पर कर्म बाबा की याद में किया, ये हो नहीं सकता है कि वो कर्म में सफलता न मिले। अगर मैं बाबा की याद में हूँ, समझो रोटी भी पका रही हूँ, सब्जी भी बना रही हूँ, या गाड़ी भी चला रहा हूँ, या कोई कुछ भी, और अगर कुछ ऐसा कुछ हो जा होना है, तुरंत बाबा की टचिंग आएगी, बेटे बच्चे समझो बाबा मदद करता है। लेकिन अगर मेरा मन भटक रहा है तो बाबा मदद कैसे करेगा। अगर बाबा की याद में हूँ तो बाबा की ऐसी मदद मिलती है जो अचानक कुछ भी हो सकता है, पर वो टल जाता है, सूली से कांटा हो जाता है, क्योंकि बाबा की मदद बहुत मिली है। इसको कहते हैं कर्म योग। फिर बाबा कहते हैं ये भक्ति योग भी है। कई लोग कहते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं करते हो, और बाबा कहते हैं तुम्हारी तो सच्ची भक्ति है, भक्ति माना प्रेम, जिससे प्रेम होता है उसी को याद किया जाता है, तो हमारा प्रेम तो उस परमेश्वर से है, हम उसी को याद करते हैं, यही सच्ची भक्ति है हमारी, खाली ऊपर का आडंबर नहीं है, इतना जल चढ़ाना, इतने फूल चढ़ाने, ये फूल चढ़ाना, ये नहीं चढ़ाना है, ये सब दिखावा मात्र नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम ही सच्चे फूल बन करके मुझ पर स्वाहा हो जाते हो, सच्चे फूल तो तुम बच्चे हो, बाबा तो चेतन फूलों को देखते हैं। ये थोड़ी कि बहुत सुंदर फूल होगा, खुशबूदार फूल होगा तभी शिव बाबा प्रसन्न होगा, पर हम वो खुशबूदार फूल बन जाएं तब बाबा प्रसन्न होगा। तो इसीलिए भक्ति योग भी हमारा कितना गहरा है, सच्चा प्यार भगवान से है, जो बाबा कहते हैं वो जिनका प्यार शिव बाबा से, शिव से भक्ति में, काशी करवट खाया इतना, हाँ बस शिव के ऊपर बलि चढ़ गए। और बाबा कहते ऐसे थोड़ी, बाबा आपका सिर थोड़ी मांग रहा है, लेकिन ये जो अभिमान का सिर है ना, वो दान करो। तो सच्चा भक्ति योग भी हमारा है, क्योंकि शिव बाबा से हमारा इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि हम और कुछ बात सोचते ही नहीं है, जिससे प्रेम होता है बस उसी की लगन में मग्न हो जाते हैं। और प्रेम भी क्यों, किस आधार पर होता है, किसी व्यक्ति से भी प्रेम किस आधार पर होता है, जब उसकी कोई विशेषता देखते हैं, ऐसे ही थोड़े होता है। अब विशेषता में भी कई चीजें देखी जाती है, तो चाहे कितनी भी किसमें विशेषताएं हो, लेकिन कोई ना कोई अवगुण जरूर होगा। इसीलिए गीत भी है ना कि कितना सुंदर वो चांद, कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसमें भी दाग है, उसमें भी दाग है। तो चाहे कितना भी वो आकर्षण करने वाला होगा, बहुत गुण होंगे उनमें, लेकिन अवगुण भी जरूर होगा। सत्य परमात्मा वो सत्य है, जो भी आपका क्लास चला, जिसमें जरा भी असत्यता नहीं है। जो बाबा सुनाते हैं, जो बाबा करते हैं, वो सब सत्यता के आधार पर है, और सत्य आकर्षित करता है। अगर कोई झूठा व्यक्ति होता है, वो कभी आकर्षित नहीं करेगा, चाहे सुंदर कितना भी हो, पर वो हमेशा झूठ ही बोलता है। वो झूठा व्यक्ति कभी भी आकर्षित नहीं करेगा, लोग उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो बड़ा झूठा है, तो झूठ ही बोलेगा। तो सत्य चीज आकर्षित करती है। आपके सामने नकली वो गहने हो, आर्टिफिशियल, और दूसरी तरफ सच्चे सोने के गहने हो, और बताया जाता है ये आर्टिफिशियल है, ये सच्चा सोना, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? आर्टिफिशियल चमक उसकी बहुत है, तो चमक देख करके पसंद करेंगे या जो सच्चा है वो पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे माताएं? सच्चाई पसंद करेंगे। तो शिव बाबा को क्या कहते हैं? सच्चा पातशाह, सत्य, सत्य की शक्ति। सत्य का अर्थ बहुत गहरा है। जो अविनाशी है वो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है, जो अविनाशी और अपरिवर्तनशील वो भगवान के सिवा और कोई नहीं है। इसीलिए वो ही सत्य है, और उनसे ही सच्ची प्रीत हो, तब हम कहेंगे ये सच्चा भक्ति योग है। और जहां सत्य है वही फिर सुंदर है, वही शिव है, अर्थात सर्व गुणों का वो सागर है और कल्याणकारी है। इसीलिए उनसे ही प्रीत हो, जो सर्व गुणों का सागर है, इतना सुंदर है, गुणों से सुंदर है। बाहर की सुंदरता किसी की कितनी भी हो, तो भी क्या कहेंगे? चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जवानी में चलो किसकी सुंदरता बहुत है, लेकिन जैसे आयु बढ़ती जाती है वो सुंदरता खत्म, झुर्रियां आती जाती है चेहरे पर, पता तो चलता है ना कि ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, चाहे कितनी भी सुंदर हो। एक बार फोटोज आए थे, क्योंकि कितने सालों से ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन चलती आई है, तो वो फोटोज दिखाए थे कि आज से 50 साल पहले जो ब्यूटी क्वीन थी भारत की, चाहे विश्व की, वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन बनी, तो आज 50 साल के बाद उसका चेहरा कैसा हो गया है। तो इसीलिए ये चेहरा तो बदलता जाएगा आयु अनुसार, क्योंकि परिवर्तनशील है। और चलो चेहरा बहुत सुंदर हो, परंतु गुण सुंदर न हो, तो एक कहानी सुनाते हैं ना, एक जोक है कि किसी का, किसी लड़के का किसी लड़की से प्यार हो गया। मानो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन गुस्से वाली थी। अब गुस्से वाली तो थी पर सुंदर भी थी, तो जब भी वो गुस्सा करती थी तब वो क्या कहता था? आप तो चंद्रमुखी हो, आप तो चंद्रमुखी हो, चंद्रमा जैसा आपका मुख है। तो ठीक है, गुस्सा भी करती थी तो चंद्रमुखी थी। फिर शादी हुई, शादी हुई तो गुस्सा तो और बढ़ गया, अधिकार आ गया ना शादी हुई तो। तो फिर तो वो कहने लगा अभी तो आप सूर्यमुखी हो, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी बन गई। फिर बच्चे हुए तो कहा अभी तो आप ज्वालामुखी हो, तो कहा चंद्रमुखी और कहा सूर्यमुखी और कहा ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी अगर कुछ कोई है तो बताओ क्या परिणाम होगा उसका, सब जला डालेगा। वो सुंदरता किस काम की। लेकिन जब शिव बाबा की सुंदरता हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, सर्व गुणों में सुंदर, सर्व कलाओं में, सर्व शक्तियों में। और बाबा कहते ये जो मेरे पास है वो मैं सब तुम बच्चों को देता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, लेकिन मैं सारा जो भी ज्ञान का खजाना है मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखता हूं, सब आप बच्चों को देता हूं, तुमको मास्टर ज्ञान सागर बना देता हूं। और जब ज्ञान आ गया मैं कौन, मेरा कौन, वो कैसा है, आज भी बाबा ने कहा कि शिव बाबा की बायोग्राफी आप जानते हो, शिव बाबा की बायोग्राफी माना बायोग्राफी में क्या आता है, कैसे आता है, क्या किया, कब किया, क्या क्या उसकी विशेषताएं, वो सब बायोग्राफी में आती है, जीवन कहानी। तो शिव बाबा की भी जीवन कहानी है, संगम पर आते हैं, क्या कर करते हैं, कैसे नई दुनिया बनाते हैं। सत्युग त्रेता में उनका पाठ नहीं है, लेकिन द्वापर कलयुग में तो बहुत पाठ है शिव बाबा का। जिस इष्ट की हम भक्ति करते हैं वो तो चर मूर्ति है, भले कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन है तो पत्थर की मूर्ति। और समझो उससे साक्षात्कार भी हो गया तो मूर्ति ने थोड़ी कराया साक्षात्कार, ये तो बाबा शिव बाबा कहते ये मैं कराता हूँ, हर एक को अपनी भावना का भाड़ा देता हूँ, वो भी शिव बाबा ही देते हैं। वो देवी देवताएं जिन जो हमारे इष्ट थे वो तो सब जन्म मरण के चक्र में आ गए, तो वो थोड़ी साक्षात्कार कराते हैं, वो थोड़ी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो तो मैं करता हूँ शिव बाबा कहते। तो ये उनकी जीवन कहानी है। गीता में भी आता है जो जो जिस जिस भावना से भजता है उसकी भावना का भाड़ा मैं देता हूँ। देवों के उपासक देवों को प्राप्त होते हैं, भूतों के उपासक भूतों को प्राप्त होते हैं, भूतों को देवों के, ये जिस जिस के उपासक है उसको प्राप्त होते हैं, उनका चलो दर्शन हो गया। अब कोई देवी का भक्त हो अम्बा माँ दुर्गा काली और उस समय उसको गणेश का साक्षात्कार हो जाए तो खुश थोड़ी होगा, उसको तो देवी का ही साक्षात्कार चाहिए। तो जो जो जिस भावना की उस अनुसार मैं उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ, अर्थात उसकी भावना पूरी करता हूँ। लेकिन उसके उसमें फिर और आगे वाक्य क्या है कि भक्तों के उपासक देवों के उपासक देवों को प्राप्त होते हैं, पर जो मेरे उपासक है वो मुझे प्राप्त होते हैं। जो देवों के उपासक है वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, वो जो मेरे उपासक है वही मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात परमात्मा तो देवों का भी देव है, सबसे ऊंचा है, सबसे न्यारा है। और बाबा कहते उससे ही बुद्धि योग लगाना है, देवधारियों से तो लगाना ही नहीं है, लेकिन देव देवियों से भी नहीं लगाना है, क्योंकि उनकी याद से भी कोई हमारा उद्धार नहीं होगा। उनको भी शक्ति देने वाला शिव बाबा है, उनकी शक्ति से ही वो देव बने, ऐसे नहीं बने। तो हम क्यों ना उनको याद करें जिनसे ये सब प्राप्ति होती है। एक मिसाल देते हैं ना कि एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत सौगातें थी। तो उसने क्या किया, एक बार प्रदर्शनी लगा दी सब चीजों की जो उसको मिली हुई थी उसकी थी, और प्रजा को बुला लिया कि आओ आपको जो चीज चाहिए उस पर हाथ रखो, वो चीज आपकी। तो सारा राज्य आ गया, झुंड आ गया, हर एक को अपनी अपनी जो चीज पसंद आई उस पर हाथ रखा और राजा ने उसको दिया। पर एक लड़की आई, छोटी सी लड़की आई अंदर, वो कई चीजें थी, देख रही है देख रही है देख रही है, लेकिन कुछ भी किसी पर भी हाथ नहीं रख रही है। तो राजा को पता चला कि ये इतनी देर से देख ही रही है पर हाथ नहीं रख रही है, इसको क्या चाहिए। तो राजा उसके पास गया, कहा बेटी बताओ तुमको क्या चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चुन लो कुछ भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, देख रही है देख रही है देख रही है, आखिर कहीं हाथ नहीं लगाया। आखिर क्या किया उसने, राजा को ही हाथ लगा लिया, राजा को ही पकड़ लिया, मतलब राजा को ही चाहिए, राजा ही चाहिए मुझे। अब राजा उसका हो गया तो बाकी सब चीजें किसकी हुई, राजा ही उसका हो गया तो बाकी सब चीजें किसकी, वो भी तो उसकी हो गई। इसको इसलिए और कुछ नहीं चाहिए था, बस राजा चाहिए था। राजा उसके नजदीक आए और राजा जैसे आया नजदीक उसको ही पकड़ लिया। ये तो नहीं कहा था कि ये चीजों में मैं नहीं हूँ, ये तो नहीं कहा था, जो चाहिए लो। अब राजा खड़ा है उसको ही पकड़ लिया, माना यही चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे ये सब जो कुछ भी है ये सब क्षण भंगुर है, इसीलिए मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, मैं ही तुम्हें सर्व प्राप्ति कराऊंगा। अब निरंतर याद का यही स्वरूप है। तो निरंतर याद का मतलब ये नहीं है कि बस हमको दो चार घंटे जबरदस्ती बैठना है और मन भटकता रहे। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि पहले ना निष्ठा कराते थे, निष्ठा शब्द यूज करते थे, तो कोई आता था जिज्ञासु मुझे फलानी निष्ठा कराए, मना मेरे सामने बैठे और मुझे दृष्टि दे और वो योग कराए। लेकिन उससे बहुत नुकसान भी हो गया, क्योंकि चलो वो सामने बैठी और वो सामने बैठा है, दृष्टि वो दे रही है और वो ले रहा है, और धीरे 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 दे अभिमान में आ गई, फिर दिल लग गई। हाँ, दिल लगी गद्दी से तो परी क्या चीज है पता ही नहीं चलता है, तो बस दिल लग गई। अब बताओ, तो दिल लग गई तो कहाँ वो निष्ठा करावे योग करावे, तो वो तो दे अभिमान पूरा ही था। फिर कोर्स कराती थी कोई बहन, तो एक दिन कराया दो दिन कराया, तीसरे दिन कहे वही बहन करावे, अरे वही बहन क्यों करावे, दूसरी भी करा सकती है, नहीं वही करावे, क्योंकि वो आकर्षण देह का आकर्षण। इसलिए निष्ठा बाबा ने मना कर दिया, कोई इंडिविजुअल भाई और बहन आपस में एक दो को दृष्टि न दे, मना कर दिया बाबा ने, सब ये कैंसिल कर दिया। हम बैठते हैं गद्दी पर, सामने बैठते हैं, वो सकाश देते हैं और हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, इसलिए कोई निष्ठा नहीं कराएगा। कई तो इतने हठ योगी होते हैं, बात मत पूछो। कई विदेशी आते हैं ना, मधुबन में आते हैं, बस कहते हैं हमको सारी रात बाबा के कमरे में बैठना है, बस सारी रात बाबा का कमरा खोलो, खुला रखो, मैं सारी रात बैठूंगी। अब दादी जी को जैसे एक दिन पता चला कि सारी रात वो बैठी, तो दादी ने बिल्कुल मना किया कि रात को 11 बजे बाबा का दरवाजा बंद करो, कोई जरूरत नहीं है बाबा के कमरे में सारी रात बैठने की। हाँ, 11 बजे बंद करो, फिर भले 2 बजे भले खोलो, पर 11 से 2 कोई नहीं। और बाबा भी कहते हैं वो 12 बजे रात का ये तमो प्रधान टाइम है, उस समय जरूर सोना है। हम सोचे सारी रात हम जागे और हम ऐसे योग लगाए, नहीं लगेगा, फिर सारा दिन सोते रहेंगे, क्योंकि शरीर को नींद तो चाहिए ना। तो इसीलिए दादी ने बिल्कुल मना कर दिया। आते हैं बहुत, बस सारी रात मुझे बैठना है बाबा की याद में, बाबा के कमरे में, लेकिन उनको अलाउ नहीं करते। 11 बजे सो जाओ, फिर भले 2 बजे आओ, पर ये 3 घंटा आपको रेस्ट जरूर करना है। तो इसीलिए बाबा हठ भी करने लिए नहीं कहते, सहज है ना राजयोग हमारा। इसीलिए प्रेम भक्ति सच्चा प्रेम हो, फिर बाबा कहते ये संन्यास योग भी है, विकारों का संन्यास करना है, घर गृहस्थ का संन्यास नहीं करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, न परिवार छोड़ना है, न जिम्मेदारियां छोड़नी है, न घर बार छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा मैंने भी कुछ छोड़ा थोड़ी, मैंने भी कुछ छोड़ा नहीं, और ही ऐड किया। जो और भाई बहने थे वो भी बाबा ने अपने घर में बसाए, और ही परिवार बेहद का हो गया, बड़ा हो गया, लौकिक तो था ही साथ में, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा। तो बाबा कैसे बच्चों को कहेंगे कि छोड़ो। इसीलिए ये संन्यास योग माना हद का संन्यास नहीं है, ये विकारों का संन्यास है। तो विकारों का संन्यास करना माना ये अभिमान का त्याग करना है, मैं मेरा का त्याग करना है, मैं के बजाय, हाँ बाबा कहते आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही शुरुआत हुई। ब्रह्मा बाबा ने यही अभ्यास किया शुरू में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, बाबा लिखते थे दीवारों पर यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े कि वो आत्मा है और बाबा को उसी दृष्टि से देखे। बाबा की का इतना पुरुषार्थ चलता था। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, बहुत बाबा का उससे बहुत प्यार था, बाबा की बहुत प्यार से सेवा करती थी, लेकिन बाबा कहते थे ये आत्मा है, आत्मा है। और बाबा कहते यही आत्मा का पाठ, जो आदि का पाठ है वो अंत का भी वही पाठ है, अंत में भी ये देही अभिमानी स्थिति हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। अंत में एक सेकंड का ही पेपर होगा, एक सेकंड का पेपर, और होगा अचानक। और उस समय कोई देहधारी याद आया, कोई वस्तु याद आई, कोई व्यक्ति याद आया, कोई भी बात याद आ गई, फेल। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि अचानक होना है ना। स्कूलों में भी सरप्राइज टेस्ट होती है, सरप्राइज टेस्ट, बताया नहीं जाता है पहले कि आज आपकी टेस्ट होगी, आज आपकी परीक्षा लेंगे, इसलिए बच्चों को हमेशा पढ़ना पड़ता था कभी भी टेस्ट हो जाए। तो बाबा भी तो यही कहते ना, अचानक होगा, अचानक होगा, पर अचानक तब हम उसमें पास होंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा, और बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम एवर रेडी होंगे, जो बाबा कहते हर वक्त तैयार, क्योंकि बाबा के सिवा और कोई बुद्धि में नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले मेरे ऊपर तुम बलि चढ़ो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। भक्ति में केवल गाते थे कि हाँ मेरा तो एक दूसरा न कोई, अब प्रैक्टिकल में मैं आया हूँ तो बलि चढ़ो माना मेरे हो जाओ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो आप इस समय मुझ पर बलि चढ़ोगे तो मैं 21 जन्म तुम पर बलि चढ़ूंगा, तुम मुझे एक जन्म के लिए वारिस बनाओ, 21 जन्म मैं तुमको वारिस बनाऊंगा। और ये बाबा कोई ऐसे ही नहीं कहते, ये सत्य बात है। भक्ति में तो क्या नहीं करते थे, ईश्वर अर्पणम करते थे, ये अर्पणम, श्री कृष्ण अर्पणम, बाबा कहते वो सब नहीं, सब वो इनडायरेक्ट था, अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ और तुम बच्चों की मदद से नई दुनिया बना रहा हूँ, नई दुनिया का आपको लक्ष्य दिया है, ऐसा तुमको बनना है। बाबा ने आज ही मुरली में कहा, वो तो जो योद्धे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं आर्मी, वो अपने राजा के लिए लड़ते हैं, चलो देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तुम अपने लिए राजाई लेने लिए माया से लड़ते हो, तुम्हारे लिए है ये। शिव बाबा को कोई राजाई नहीं चाहिए, शिव बाबा तो वतन में चले जाएंगे, लेकिन तुम राजाई करेंगे तो तुम माया से युद्ध कर रहे हो विश्व का मालिक बनने के लिए, तो अपने लिए कर रहे हो, तो जो अपने लिए करता है उसको वो तो प्यार से करेगा ना। हाँ, एक वो मिसाल देते हैं ना कि एक कारपेंटर था, तो वो उसने मालिक के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत मकान बनाए, ये बहुत कुछ किया। अब बूढ़ा वो चला था, तो वो मालिक ने उसको बोला कि अच्छा तुम रिटायर्ड तो हो रहे हो, लेकिन रिटायर्ड होने से पहले एक काम करो। और क्या करो? एक और बना दो, बस एक और मकान। तो बड़े भारी मन से उसने वो एक मकान बनाया, बहुत भारी मन से, भाई चलो केयर आए बना दो। और जब वो बन के तैयार हुआ, वो सिंपल बना इतना, क्योंकि वो उसने मेहनत नहीं की, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो बन के तैयार हो गया तो मालिक ने कहा ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए हमने बनवाया है। अरे उसको बुद्धि में आया मेरे लिए था तो मैं अच्छा तो बना था। मेरे लिए अगर था तो मैं अच्छा तो बना था, क्योंकि अपने लिए ना, मेरे लिए है तो अच्छा तो बनाऊंगा। पर ये मालिक बोल रहा है चलो बना दो, ठीक है उनको खुश करो। पर मालिक ने ये नहीं कहा ये तुम्हारे लिए तुम एक बनाओ, ये नहीं कहा। तो बाद में पश्चाताप हुआ कि ये तो मेरे लिए था, तो मुझे पहले मालूम होता तो मैं इतना जी जान से वो बनाता। और यहाँ तो बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परमधाम में नहीं ले जाऊंगा कुछ भी। तो जब बाबा हम बच्चों को इतनी गारंटी करते हैं, आप सोचो, फिर भी अगर किसी को संशय आ जाए कैसे 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 करता रहे, नखरे करता रहे, बहानेबाजी करता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? इसलिए बताते हैं कि जब भगवान ने भाग्य बांटा, भगवान ने भाग्य बांटा और सबको कहा कि कोई न एक एक बर्तन लेकर आओ भाग्य को लेने के लिए, तो कोई तो बहुत बड़े बड़े बर्तन लेके गए, कोई छोटे लेके गए, कोई क्या लेके गए, कोई क्या लेके गए, लेकिन कुछ तो क्या लेके गए, एक छलनी लेके गए, चलो कुछ तो है छलनी, अब कुछ तो है, पता नहीं क्या देगा भगवान, तो कुछ मिलेगा तो सोचा छलनी में ही ले लूं। अब छलनी लेके गए तो छलनी में क्या हुआ? वो भाग्य सारा बह गया। अब बह गया तो हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, और कुछ भी नहीं आया तो देखता ही रह गया सबको, सब तो अपना भाग्य लेकर चले गए और मैं ऐसे ही रह गया। तो ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे? बाबा हमेशा कहते, दादी गुलजार भी कहती थी, ये क क क क की भाषा बोलते हैं, तो वो क क क क तो पसंद थोड़ी आता है, कौआ का 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 करता रहता है तो सब उसको धिकारते हैं, हट जाओ, हाँ वो खिड़की पर बैठा होता है ना कौआ, तो सब उसको निकाल देते हैं, चो हटो, ये तो पता नहीं क्या ग्रहचारी लाएगा, क क क क क कौआ करता रहता है। पर वहीं एक कोयल बैठी हो और कितनी सुंदर उसकी आवाज हो और वो मधुर आवाज कर रही हो तो कितनी प्यारी लगती है, सबको दिल होती है कितनी प्यारी ये कोयल है। तो कोयल क्यों इतनी प्यारी लगती है? क्योंकि मीठी जुबान है, मीठी आवाज है। कौआ किसी को पसंद नहीं है, तो हम भी कौए कैसे बन जाते हैं? ये क्यों, ये क्या, ये कौन, ये कहाँ, ये कैसे, क क क क क, तो क क क क नहीं करना है। इसलिए कहा ना, वाई वाई नहीं, वॉट वॉट नहीं, डॉट, हाय हाय नहीं, वाह। तो हाय हाय करेंगे तो हाय हाय हो रह जाएंगे। तो भगवान भाग्य बांटने आया है, इस भाग्य को पहचानो। ये नहीं कहो कि बाबा तो चला गया, हाँ मामा चली गई, या एक बाप दादा का भी पाठ तो अभी पूरा हो गया, नहीं, ये सब गुप्त रूप में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन माया भी उतना ही अपना रूप दिखा रही है। ये माया का विकराल स्वरूप क्यों है? क्योंकि अंतिम स्वरूप है, क्योंकि अंत में हाँ उसका वो पता है, उसको उसको जाना है माया को, तो बहुत विकराल रूप लेकर के आएगी। कई बार होता है ना, कई मनुष्यों को हम देखते हैं, बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, लेकिन जब मरने का समय आता है ना, उसके पहले इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया और फट से खत्म, ऐसा भी हो जाता है। वो बल्ब भी होता है ना, बल्ब तो चलो चमक देता है, लेकिन जब उसका वो फ्यूज होना होता है ना, तो इतनी चमक देता है, सोचते अरे कितनी चमक हो गई, एकदम चमक दे के फ्यूज खत्म। तो माया भी ऐसी ही है, उसका अभी बहुत विकराल रूप है, क्योंकि अंतिम रूप है ना, और ये सबसे अंतिम रूप विकराल रूप कौन सा है, माया प्रभु का रूप लेकर के आती है, प्रभु का रूप लगेगा, ये प्रभु का रूप है, लेकिन प्रभु का रूप क्या होगा, कईयों में प्रवेशता हो जाती है, और प्रवेशता क्या होती है, फिर कहेंगे 108 प्रकार का भोग बनाओ, या कई ऐसी रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, वो कहेंगे फलाने का हमको बलि चाहिए, पता नहीं क्या क्या दुनिया में तो क्या नहीं लगा पड़ा है, तो भगवान ये सब थोड़ी मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा बाबा भगवान, वो तो दाता है, वो तो देता है, मांगेगा क्यों। बाकी हाँ ये जरूर बाबा कहते हैं, अपना विकारों की बलि दो बस। इसलिए हमारे पास जो आते हैं ना, शिविर में भी आते हैं, तो पूछते ना आपकी फीस क्या है, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटा पैसा, 5 खोटा पैसा और 1 आना, और वो सब आपके पास है, तो कहते हैं हमारी जेब में तो खोटे पैसे है ही नहीं। हम कहते हैं है, देखो अच्छी तरह से अपना जेब है, जरूर कहीं कोने में छिपे हुए रखे हैं खोटे पैसे। फिर जब उनको बताते हैं कि ये 5 विकारों की बात है, वो तो सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें ये विकार नहीं होंगे, फिर 5 खोटे पैसे दो और 1 आना, प्रतिज्ञा करके जाओ, संकल्प करके जाओ, एक बार मैं रोज 1 घंटा सेवा केंद्र पर जाऊंगा, ये आप संकल्प करके जाओ, यहाँ ये फीस है हमारी, अगर ये आप फीस देंगे ना, तो आप पास विद ऑनर हो जाएंगे, सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे, हाँ है ना, करना है ना ऐसे ही, क्योंकि शिव बाबा आए हैं सत धर्म की स्थापना करने, 3 चीजें एक साथ बाबा स्थापन करते हैं, एक तरफ धर्म की स्थापना, दूसरे तरफ राज्य की स्थापना, और तीसरे तरफ कुल की स्थापना, एक धर्म एक राज्य एक कुल, दैवी कुल, देवी देवता धर्म, देवताओं की राजाई। अब इन तीनों के लिए क्या चाहिए, वो बाबा हमको बार बार ताकीद करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता चाहिए, राज्य की स्थापना के लिए नियम मर्यादाएं चाहिए, और कुल की स्थापना के लिए भाई भाई की दृष्टि चाहिए। इसलिए बाबा बार बार यही याद कराते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, और शिव बाबा के पोतरे हो, शिव बाबा को पोतरिया नहीं है, सिर्फ पोतरे हैं, आत्मा रूप में बेटे हैं, आत्मा बेटा है, क्योंकि वर्षे का हकदार है हर आत्मा, और ब्रह्मा के बच्चे बेटे बेटियां हैं, क्योंकि मुख संतान है। तो हर मुरली में बाबा ये क्यों याद दिलाते हैं, ताकि ये भूल मत जाओ हम कौन हैं। और ब्रह्मा को रचयिता माना जाता है, उस रचयिता की हम पहली रचना है, दुनिया के लिए वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर होगा, 84 जन्म लिया वो पहला पिता, और अभी अंतिम पिता वो 84 जन्म ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, लेकिन हमारे लिए वो आदि पिता है, पहला पिता, ब्रह्मा पिता। हम ब्रह्मा बाबा का फोटो रखते हैं ना सेंटरों पर, घरों में भी रखते हैं, तो लोग पूछते आप लोग तो परमात्मा को शिव मानते हो, ज्योति रूप, फिर इनका फोटो क्यों रखा है? हम कहते क्यों ना रखे, ये तो हमारा पिता है ना, अलौकिक पिता है। आपके पिता का फोटो आपके घर में नहीं है क्या? कहेंगे है, अगर है तो ये भी हमारा पिता है ना, शिव बाबा तो है परम पिता, पर ये अलौकिक पिता है, हम इनको कैसे भूल सकते हैं? इनके द्वारा ही तो शिव बाबा की पहचान मिली हमें, इनके ही तो मुख संतान हम बने हैं, इनके थ्रू ही तो शिव बाबा मिलते हैं। नंदीगण है ना, नंदी, तो नंदी की भी बहुत महिमा है, नंदीगण की बहुत महिमा है। जहां भी जाओ वहां पर ये जरूर कहते हैं, अगर शिव से मिलना है ना, शिव से कुछ बात करनी है तो नंदी के कान में बोलो, कान में, कान इतने बड़े बड़े दिखाते हैं नंदी के, उसके कान में आप जो कहेंगे ना वो शिव तक पहुंच जाएगा। पोस्ट ऑफिस है ना, थ्रू होता है वाया। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा माध्यम है, पर हम मिलते किससे हैं? शिव बाबा से। और ये बाबा कहते तुम्हारी लगन इतनी पक्की होनी चाहिए, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, पर ब्रह्मा भी कम नहीं है। तो ब्रह्मा हमारे लिए आदर्श जरूर है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया मुझे वो करना है। ब्रह्मा बाबा कैसे तपस्या करते थे ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ब्रह्मा बाबा कभी शिव बाबा को भूलते होंगे। निरंतर योगी थे, हर वक्त शिव बाबा का मुख नाम मुख पर था ही, हर वक्त, कभी लौकिक बातें करते हुए देखा ही नहीं बाबा को। मम्मा भी ऐसे ही थी, जोर से बोलते हुए भी कभी नहीं देखा मम्मा को, आवाज करते हुए भी नहीं देखा मम्मा को। मम्मा देखती थी कोई माताएं ऐसे चप्पल पहनती है या कोई भाई जूता पहनते हैं, इतनी आवाज टक 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 आवाज होती है, तो मम्मा कहती थी ये धरती को भी दुख मिलता है, धरती को भी दुख मिलता है, टक 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 नहीं चलते चप्पल की आवाज, जूते की आवाज, तो धरती को भी दुख मत दो और तो मनुष्यों को तो मत दो। परंतु ये सब तब संभव होगा जब हमको फिर वही बात जो दादी जानकी कहती थी, हम कौन, हम कौन और हमारा कौन, बस उसको कभी मत भूलो। वो अगर सदा याद है तो हम निरंतर योगी हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में बाबा कहते बैठना भी जरूरी है ताकि सब तरफ से बुद्धि हट जाए और केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई, और कहीं भी मन बुद्धि न जाए। और उसके लिए बाबा अमृत वेला और शाम का समय निर्धारित करते हैं। दिन में बाबा कहते बहुत गोरख धंधे हैं, बहुत कारोबार होता है, तो वो भी करना है, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, फंसना कहीं भी नहीं है, और नया भी कुछ नहीं जोड़ना है क्योंकि अभी जाना है। हाँ, जैसे किसी को जाना होता है, ट्रांसफर होता है, अब उसके आगे कोई एक कबर्ड रख दे, भाई ये कबर्ड आप यूज करो ना, बाबा मेरी ट्रांसफर हो रही, मैं तो जा रहा हूँ, तो कबर्ड लेके क्या करेगा, कबर्ड थोड़ी लेके जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ, तो उसकी बुद्धि तो जाने में ही होगी, वो किसी की चीज लेगा नहीं। तो बाबा कहते नया भी नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर कब चुकतू करेंगे, अभी तो हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। तो न कुछ छोड़ना भी नहीं है, है उसको, हाँ उसको निभाना है जरूर, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना कर्मों का, तो छोड़ कैसे सकते हैं, निभाना भी है, पर नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो नया नहीं बनाना है, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, फंसना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि मेरा बुद्धि योग और कहीं तो नहीं जा रहा है, कहीं मैं अपना कोई नया कर्मों का खाता तो नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो धर्मराज पुरी में वो चुकतू करना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी में चुकतू न हो उसके लिए यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर दूं, जो आज भी बाबा ने कहा विक्रमाजीत बन के जाना है। तो नया कोई विकर्म नहीं करना है, जो किए हुए हैं वही खत्म करने हैं। जैसे किसी के सिर पर कर्जा होता है वो उसको कहा जाएगा भाई नया कर्जा क्यों ले रहे हो, जो है उसको ही चुकतू नहीं कर पाए हो और नया कर्जा और ले रहे हो, कब चुकतू करोगे। तो ऐसा कोई कर्मों का खाता नहीं बनाना है जो नया हिसाब किताब बने, पहला ही चुकतू नहीं हुआ है। तो इसीलिए आगे कोई हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है, ये भी समझदारी बाबा देते हैं, ये भी योग है। तो अष्टांग योग कहते हैं, तो ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर है संन्यास योग, और फिर आठवां है समत्व योग, समत्वता, जो हमको हमारा लक्ष्य बाबा देते हैं, तुम्हें बाप समान बनना है। तो बाप समान माना वो समत्वता आ जाए, एक ऐसा बैलेंस हो जाए, बैलेंस ब्राह्मण जीवन माना बैलेंस का जीवन, समत्वता समानता। तो बाप समान बनना है उसके लिए समत्वता हो, जो भी बाबा हमें बताते उसमें बैलेंस रखो। एक तरफ बाबा कहते हर्षित मुक्ता हो, दूसरी तरफ बाबा कहते गंभीरता हो, ये दोनों ही गुण है। बहुत ज्यादा हर्षित मुक्त हंसते ही रहना ये भी फिर विकार बन जाता है, और फिर एकदम इतने गंभीर जो बोलते ही नहीं तो वो भी नुकसानकारक है। तो हर्षित मुक्ता भी हो तो गंभीरता भी हो, दोनों की समत्वता हो। ये भी तब होगा जब मन बाबा में एकाग्र होगा, बालक और मालिक की समत्वता हो, बैलेंस हो। जब संगठन में है तो बालक बन जाओ, पर इंडिविजुअल है तो मालिक बन के पुरुषार्थ करो और ही अपना। तो जब ये हम समत्वता अपने जीवन में लाएंगे तब हम बाप समान बन सकेंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे, तब हम संपूर्ण बन के बिना सजा खाए घर जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे। बस यही लगन रखना और बट्टी से ऐसे मजबूत होकर के जाना कि बाबा ने हमें इतनी शक्ति दी है और उस शक्ति के अनुसार आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।
आप को मैं निरंतर मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा।
देखते दे